नंदिनी से वो स्पीकर पर बात कर रही थी। नंदिनी ने कहा, हाँ मैं जानती हूँ तुमने इसीलिए मुझे कॉल किया होगा। वैसे तुम्हारा लहंगा मल्टी कलर का है और तुम पर बहुत ज़्यादा सूट कर रहा है। तुम इस पर लाइट मेकअप नहीं करोगे? इप्सिता ने कहा, हाँ वही हम भी सोच रहे थे कि मुंह दिखाई में पता नहीं लाइट मेकअप अच्छा लगेगा या नहीं। नंदिनी ने कहा, अच्छा तो आज ही तुम्हारी मुंह दिखाई हो रही है क्या? इप्सिता ने हाँ में अपना सिर हिलाया। तभी नंदिनी उसकी तरफ देखते हुए बोली, मेरी तो मुंह दिखाई हुई ही नहीं। इतना बोलकर नंदिनी का मुंह बन गया। इप्सिता उसकी तरफ देख रही थी। तभी नंदिनी ने कहा, खैर छोड़ो ये सब और जैसे जैसे मैं बता रही हूँ वैसे वैसे मेकअप करो तुम, ओके? नंदिनी इप्सिता को एक एक स्टेप बताती जा रही थी और इप्सिता ने बिल्कुल वैसा ही मेकअप किया। जैसे ही इप्सिता का मेकअप कंप्लीट हुआ, इप्सिता ने नंदिनी की तरफ देखते हुए कहा, वाह ये मेकअप तो सच में हमारे लहंगे के साथ काफी सूट कर रहा है। इतना बोलकर नंदिनी ने कहा, ओके फाइन, तो फिर अब तुम जल्दी से चुन्नी को अपने ब्लाउज पर पिनअप करो और उसे सर से ओढ़ लो और मांगटीका से पीछे अपना पल्लू रखना। इप्सिता ने हाँ में अपना सिर हिलाया और नंदिनी ने कहा, अच्छा अब मैं कॉल रखती हूँ। इतना बोलकर नंदिनी ने तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। जैसे ही इप्सिता ने अपनी चुन्नी को अपने सिर पर रखा, अभिमन्यु खाते खाते रुक गया। वो इप्सिता के चेहरे की तरफ ही देखता रह गया। इप्सिता बहुत ही प्यारी लग रही थी। तभी अभिमन्यु ने पानी का ग्लास उठाया और पानी पीकर वो सीधे इप्सिता के पास आकर खड़ा हो गया। इप्सिता शीशे में अपने आप को देख रही थी और तभी अभिमन्यु उसके बगल में आकर खड़े होते हुए बोला, हमें तो लगा ही नहीं था कि हम आज आपके बगल में खड़े होंगे तो अच्छे भी लगेंगे। सबकी नज़रें तो आप पर ही टिकी होंगी, कोई हमें तो देखेगा ही नहीं। इप्सिता अभिमन्यु की बात सुनकर मुस्कुराने लगी और तभी अभिमन्यु ने कहा, वैसे हमें नहीं पता था कि आपको इतना अच्छा मेकअप करना भी आता होगा, आपने तो सच में कमाल कर दिया। इतना बोलकर अभिमन्यु इप्सिता के बिल्कुल करीब आने लगा और इप्सिता उसे अपने इतने करीब देखकर ब्लश करती जा रही थी। अभिमन्यु का मन कर रहा था कि वो इप्सिता को अभी किस कर ले। वो इप्सिता को किस करने के लिए बिल्कुल उसके करीब आ गया और वो उसके होठों के नज़दीक पहुंच ही था कि तभी अर्पिता रूम में आई। अर्पिता ने कहा, भाभी सा आप रेडी हो गई? अभिमन्यु और इप्सिता दोनों के चेहरे एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीक थे और उसे देखकर अर्पिता ने तुरंत अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया और कहा, आई एम सो सॉरी भाभी सा, एक्चुअली सब नीचे आपका इंतजार कर रहे हैं और शायद हम गलत टाइम पर आ गए हैं, हमें माफ़ कीजिएगा। इतना बोलकर अर्पिता वहां से जाने लगी। अभिमन्यु और इप्सिता दोनों ही काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस्ड हो गए। अभिमन्यु जल्दी से पीछे की तरफ गया और उसने अर्पिता को रोकते हुए कहा, अरे यार अर्पिता रुको। अर्पिता ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और वो बोली, कोई बात नहीं हम थोड़ी देर बाद आते हैं। इतना बोलकर अर्पिता जल्दी से कमरे से बाहर चली गई। अभिमन्यु उसकी तरफ देख ही रहा था कि इप्सिता ने अपना सर पकड़ते हुए कहा, ओ गॉड क्या करते रहते हैं आप भी, जब रूम खुला था तो आपको हमारे करीब नहीं आना चाहिए था, अब बताइए क्या सोच रही होगी अर्पिता। अभिमन्यु इप्सिता को इतना एम्बेरस देखकर मुस्कुराते हुए बोला, क्या सोचेगी? कुछ नहीं, बस इतना ही सोचेगी कि उसके भाई सा और भाभी सा कितने ज्यादा रोमांटिक हैं। इप्सिता ने अभिमन्यु को खुद से दूर करते हुए कहा, हटिए आप। इतना बोलकर वो जल्दी से बेड के पास आई और अपनी सैंडल पहनने लगी। उसने अभिमन्यु की तरफ देखते हुए कहा, चलिए अब आप वहां क्यों खड़े हैं? इप्सिता हैवी लहंगे के साथ रूम से बाहर जाने लगी। तभी उसका पैर लड़खड़ाया और वो गिरने ही वाली थी कि अभिमन्यु ने जल्दी से इप्सिता का हाथ थाम लिया। वो दोनों सीधे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। इप्सिता को सीढ़ियों से उतरने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी क्योंकि उसने हील्स पहनी हुई थी और इतने हैवी लहंगे के साथ उसे चलने में परेशानी हो रही थी। अभिमन्यु ने इप्सिता का हाथ कसकर पकड़ा और दूसरे हाथ से उसका लहंगा थोड़ा सा उठा लिया। इप्सिता ने उसे ऐसा करते देखा तो उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए सब लोग आपको ही देखने लगेंगे। अभिमन्यु ने इप्सिता की बात सुनकर उसकी बाहें छोड़ते हुए कहा, तो अगर देखते हैं तो देखने दीजिए, वैसे भी अपनी वाइफ की हेल्प करना कोई गलत बात थोड़ी होती है। अभिमन्यु की ये बात सुनकर इप्सिता ने कहा, हाँ बिल्कुल कोई गलत बात नहीं होती है, लेकिन आप हमारे हस्बैंड होने के साथ साथ इस महल के राजा सा भी हैं, अगर आप ऐसा करेंगे तो। इप्सिता बोल ही रही थी कि अभिमन्यु ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहा, कोई कुछ नहीं सोचेगा बस चलिए। अभिमन्यु इप्सिता के साथ सीढ़ियां उतर रहा था और उसने उसके लहंगे को बड़े आराम से थाम लिया ताकि इप्सिता ठीक से सीढ़ियां उतर पाए। जैसे ही अर्पिता ने इप्सिता और अभिमन्यु को सीढ़ियों से उतरते हुए देखा, वो जल्दी से आगे बढ़ी और उसने इप्सिता का हाथ पकड़ा और उसके लहंगे को संभालते हुए वो उसे नीचे की तरफ लेकर आने लगी। इप्सिता के चेहरे पर घूंघट नहीं था। तभी मासा ने अर्पिता को घूरते हुए देखा। जैसे ही मासा की नजरें अर्पिता से मिली, अर्पिता समझ गई कि मासा क्या कहना चाह रही हैं और वहीं सीढ़ियों पर ही अर्पिता रुक गई। अर्पिता को इस तरह रुकते देखकर अभिमन्यु और इप्सिता दोनों हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। तभी अर्पिता ने धीमी आवाज में कहा, भाभी सा एक मिनट। इतना बोलकर उसने इप्सिता को रोका और उसका पल्लू उठाकर नाक तक कर दिया। अर्पिता के घूंघट डालते ही अभिमन्यु उसकी तरफ देखते हुए बोला, अरे अर्पिता ये क्या कर रही हैं आप? अर्पिता ने अभिमन्यु की तरफ देखते हुए कहा, भाई सा मासा ने कहा है। अभिमन्यु ने जैसे ही ये बात सुनी उसने कहा, लेकिन अर्पिता अगर इतना लंबा घूंघट डालेंगी तो इप्सिता उतरेंगी कैसे?
इप्सिता ने जैसे ही मासा का नाम सुना उसने अभिमन्यु का हाथ दबाकर कहा, हम ठीक हैं अभिमन्यु, हम आराम से उतर लेंगे। इतना बोलकर इप्सिता सीढ़ियों से आराम से नीचे उतरने लगी। जैसे ही वो नीचे उतरकर हॉल में आई सभी लोग उसकी तरफ देखने लगे। वहीं हॉल में समर्थ के साथ साथ पल्लवी और नरेंद्र भी खड़े थे। दोनों के चेहरे पर गुस्से के साथ साथ चिड़चिड़ाहट भी साफ नजर आ रही थी। उनके चेहरे देखकर ही समझ में आ रहा था कि उन दोनों में से खुश तो कोई भी नहीं था। वहीं इप्सिता और अभिमन्यु जैसे ही हॉल में आए वहाँ पर बने हुए बड़े से सोफे पर वो दोनों बैठ गए। वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सब उन दोनों की तरफ देखते हुए बोले, वैसे मानना पड़ेगा इन दोनों की जोड़ी तो बड़ी ही अच्छी लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मानो ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। उनकी बात सुनकर पल्लवी ने अपने हाथों को कसकर मुट्ठी बांध ली और वहीं मासा जो अपनी बड़ी सी कुर्सी पर पैर चढ़ाकर बैठी हुई थी उन्होंने अभिमन्यु और इप्सिता की तरफ देखा। इप्सिता की नाक तक उसका घूंघट था लेकिन उसके होंठ साफ नजर आ रहे थे और उसे देखकर ही पता चल रहा था कि इप्सिता कितनी ज्यादा प्यारी लग रही होगी। तभी अर्पिता ने उन सब की तरफ देखते हुए कहा, मासा अब आप सब लोग भाभी सा की मुंह दिखाई कर सकते हैं। इतना बोलकर अर्पिता वहीं इप्सिता के पीछे आकर खड़ी हो गई। अभिमन्यु इप्सिता के बगल में ही खड़ा था। तभी अभिमन्यु की बुआ आई और उन्होंने इप्सिता के घूंघट को उठाया। इप्सिता का चेहरा देखकर वो मुस्कुराते हुए बोली, इप्सिता तुम तो कल से भी ज्यादा आज खूबसूरत लग रही हो, ये लो बेटा हमारी तरफ से आपके लिए छोटा सा गिफ्ट। इतना बोलकर उन्होंने अपने हाथ में पकड़े हुए एक ज्वेलरी बॉक्स को इप्सिता के हाथ में रख दिया। इप्सिता उनकी तरफ देखकर मुस्कुराई। उसने ज्वेलरी बॉक्स की तरफ देखा और वो अर्पिता की तरफ देखने लगी। अर्पिता ने उसके हाथ से वो ज्वेलरी बॉक्स लिया और उसे वहीं टेबल पर रख दिया। एक एक करके वहाँ जितने भी लोग थे उन सब ने आकर इप्सिता की मुंह दिखाई की और उसे कुछ न कुछ प्रेजेंट दे रहे थे। वहीं पल्लवी चुपचाप खड़ी थी। तभी अभिमन्यु की बुआ ने पल्लवी की तरफ देखते हुए कहा, पल्लवी भाभी सा आपने इप्सिता बहुरानी को कुछ भी गिफ्ट नहीं दिया।
जैसे ही पल्लवी ने ये बात सुनी वो नरेंद्र की तरफ देखने लगी। नरेंद्र ने अपनी जेब से 500 का एक नोट निकाला और उसे पल्लवी के हाथ में पकड़ा दिया और आगे जाने का इशारा करते हुए धीमी आवाज में कहा, जाओ जाकर रस्म पूरी करो वरना ये सब लोग अभी तरह तरह की बातें करेंगे। उसकी ये बात सुनते ही पल्लवी ने धीमी आवाज में कहा, कैसी रस्म, हमें तो उसका चेहरा देखने का भी मन नहीं कर रहा है और आप हैं कि हमें उसे नेक देने के लिए कह रहे हैं। नरेंद्र ने गुस्से से पल्लवी की तरफ घूरते हुए कहा, अब अगर यहाँ पर हम मौजूद हैं तो कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा ना, अब तुम मुझे और गुस्सा मत दिलाओ, जाओ। नरेंद्र ने इस बार थोड़ा जोर से ये बात कही और पल्लवी को ना चाहते हुए भी इप्सिता की मुंह दिखाई के लिए उसके पास जाना पड़ा। जैसे ही पल्लवी वहां पर गई इप्सिता उसकी तरफ हैरानी से देखने लगी। वहीं अभिमन्यु जो पल्लवी को इप्सिता के करीब आते देख रहा था उसने अपने मन में कहा, अब चाची सा यहाँ आ रही हैं तो वो कुछ ना कुछ तो जरूर बोलेंगी। इतना बोलकर अभिमन्यु ने इप्सिता की तरफ देखा और वो इप्सिता के और करीब आ गया। उसने बड़े ही प्रोटेक्टिव तरीके से इप्सिता के हाथ पर अपना हाथ रख लिया। इप्सिता उसे ऐसा करते देख हल्के से मुस्कुराई। तभी पल्लवी ने अपने हाथ में पकड़े नोट का गड्डी इप्सिता के हाथ में पकड़ा दिया और चुपचाप वापस पीछे जाकर खड़ी हो गई। टू बी कंटिन्यूड।